तो आज श्री बलराम जयंती या श्री बलराम के जन्म दिवस या आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में यह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के आठवें अध्याय का 12वां श्लोक यहां आप देख रहे हैं सामने। इस श्लोक में यदुकुल के पुरोहित गर्ग मुनि नामकरण संस्कार कर रहे हैं बलराम जी का। कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरण संस्कार किए और इस समय उन्होंने नंद महाराज को ये श्लोक कहा। श्री गर्ग उवाच अयम हि रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः यदूनामप्युतद्भावात् संकर्षणमुशन्त्यपि। श्री गर्ग उवाच बच्चा जो कि रोहिणी का पुत्र है अपने सारे सगे संबंधियों को और मित्रों को अपने दिव्य गुणों की वजह से पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और क्योंकि वो अद्भुत शारीरिक बल प्रकट करेगा इसलिए उसका नाम बल भी होगा। और इसके अतिरिक्त क्योंकि वो इन दो परिवारों को तुम्हारे अर्थात नंद महाराज के और वसुदेव के इन दो कुटुंबों को वो एक करेगा, इसलिए उसका नाम संकर्षण भी होगा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण आज श्री बलराम जी का हैप्पी बर्थडे है, वार दिवस जन्म दिवस। भगवान के जन्म दिवस को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ भगवान के भक्त मनाते हैं। ऐसे अनुष्ठान बार बार मनाने से हमें दिव्य प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे अनुष्ठान मनाकर हम सारे मनुष्य समाज में कल्याण फैला सकते हैं। सारे मनुष्य समाज का उद्धार और कल्याण केवल ऐसे अनुष्ठानों के माध्यम से हो सकता है। समाज में अनुष्ठानों की कोई कमी नहीं है। कितने सारे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कार्यक्रम समाज में चलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इनसे कोई लाभ नहीं होता प्रजा को, बल्कि प्रजा केवल भौतिक चीजों में अटकी हुई रहती है। लेकिन जब ऐसे अनुष्ठान, उत्सव, त्योहार हम मनाते हैं जो कि भगवान श्री हरि के ऊपर केंद्रित होते हैं, तो उस समय हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है और साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हुए हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। इस संसार से निरासक्त हो जाते हैं और वास्तव में हमारे मनुष्य जीवन को हम सफल बना सकते हैं। आज बलराम जी के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। बलराम जी ने कई अद्भुत लीलाएं प्रकट किए, जैसे यहां पर हम भजन में गा रहे थे, वह शिव पुष विषदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृता हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी बलराम या श्री बलदेव जी का गुणगान कर रहे हैं। वो उस लीला का स्मरण कर रहे हैं जब भगवान श्री बलराम ने अपने हल को लेकर यमुना जी को सबक सिखाया। जब बहुत बहुत वर्षों के बाद में, जबकि कृष्ण और बलराम दोनों वृंदावन छोड़ के चले गए थे, मथुरा में कई वर्ष रहे, 28 साल रहे, मथुरा भी छोड़कर गए, द्वारका में रहे, कई सालों तक द्वारका में भी रहे, और कृष्ण कभी भी वृंदावन में लौटकर नहीं आए, लेकिन बलराम जी को उन्होंने भेजा। तो एक बार बलराम जी वृंदावन में लौटकर आए तो 2 महीने पूरे वहां रहे, सुंदर सुंदर लीलाएं किए। उन सारे लीलाओं का वर्णन आज नहीं करेंगे, लेकिन जब एक बार वो उनकी गोपियों के संग में बैठकर विहार कर रहे थे, तो उस समय देवता वरुण देव ने उनके भोग के लिए, उनके आनंद के लिए वारुणी नाम का पेय उनको प्रदान किया अपनी पुत्री वरुणी द्वारा, और ये एक मधु से बना हुआ बहुत स्वादिष्ट मीठा पेय होता है, लेकिन ये सब हमारे लिए नहीं है, भगवान इसका पान कर सकते हैं। इस वारुणी का विकृत रूप आजकल बाजार में लोग खरीदते हैं छोटे छोटे बोतलों में और फिर पीते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण या जी बलराम जी जो पीते हैं वो दिव्य होता है। तो भगवान श्री बलराम जी की ये लीला थी, वो वारुणी पेय एक वृक्ष से निकल रहा था और उसका सुगंध सारे वृक्ष, सारे वन में फैल रहा था। यहां पृथ्वी लोक की जो वारुणी है, खास करके बेलगाम की वारुणी, उसमें ऐसा कोई सुगंध नहीं आता है। जहां ऐसे जगह से गुजरते हैं तो जल्दी से वहां निकल जाने की इच्छा होती है, क्योंकि इतना दुर्गंध आता है, लेकिन ये वारुणी से बहुत सुगंध निकल रहा था। देखिए, किसी वस्तु को पहचानना हो तो उसके गंध से पहचान सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए हम लोग प्याज लहसुन नहीं लेते हैं, क्यों? गंध से ही उसी चीज को पहचान सकते हैं। मांस मटन मच्छी नहीं खाते, केवल गंध से पहचान सकते हैं। इसलिए पशु जो होते हैं केवल गंध से चीजों को पहचानते हैं। अगर कोई चीज सड़ी हुई होगी तो खाए बिना पशु जान सकता है, केवल सूंघेगा, गंध से पहचानेगा और फिर उसको स्वीकार करेगा या तो फिर त्याग देगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिस पेय का पान बलराम जी ने किया वो कोई साधारण इस संसार का मद्यपान नहीं था, दिव्य था। और भगवान वैसे भी जो चाहे वो कर सकते हैं, हम तो भगवान की नकल नहीं कर सकते। तो बलराम जी इस पेय का पान करके गोपियों के संग में रवण कर रहे थे, जिस तरह से कृष्ण भगवान भी वृंदावन में गोपियों के संग में रवण करते हैं, उसी तरह बलराम जी की उनके गोपियां हैं जिनका संग वो करते हैं। जिस तरह से कृष्ण भगवान का संबंध गोपियों से बिल्कुल दिव्य है, और इस संबंध से, इस संबंध का, इस भौतिक संसार में पुरुष स्त्री का संबंध जो है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक उसी तरह से बलराम जी और उनके गोपियों का संबंध भी है। और ऐसे जब विहार कर रहे थे तो बलराम जी की इच्छा हुई कि अभी हमें यमुना में तैरना चाहिए। यमुना जी थोड़े दूरी पर थी, तो बलराम जी ने यमुना जी को आदेश दिया कि यमुना जी आप जल्दी से मेरे पास में बहकर आइए, ताकि हम आप में जल क्रीड़ा, जल विहार कर सकें। यमुना जी हालांकि भगवान श्री कृष्ण की बहुत भक्त हैं, लेकिन भगवान की लीला शक्ति ने उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया। उन्होंने बलराम जी को ठीक से पहचाना नहीं, उन्होंने सोचा कि ये तो मद्यपान लेकर कुछ ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए गंभीरता से इस बात को नहीं लिया। जब बलराम जी ने ये देखा तो बड़े क्रोधित हो गए, फिर उन्होंने बहुत गुस्से होकर कहा कि मेरी बात न मानने वाली कालिंदी, हे यमुना, अब मैं तुम्हें मेरे पास खींच के ले आऊंगा। और उनका हल निकाला और फिर यमुना जी के जल को खींच कर ले आए, और इस तरह से यमुना जी का जल जो है वो बहुत छोटे 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 नदियों में उसका विभाजन हो गया। और आज तक भी आप देखेंगे कि उस वृंदावन के पास में जाएंगे और दूर से तो वहां आप देखेंगे यमुना जी छोटी 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 नदियों में है, आज तक भी वो है। तो उस समय जल्दी जल्दी से मूर्तिमान यमुना देवी, कालिंदी देवी बलराम जी के पास उपस्थित हुई और क्षमा याचना करने लगी कि हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। इसलिए हम आपके पास नहीं आए, लेकिन अभी हम आपका परिचय हो गया है, इसलिए मैं अभी आपके पास से ही गुजरने वाले हूँ। तो उनका पानी जो है फिर बलराम जी के विहार के लिए पास से ले आई। तो इस तरह से बलराम जी ने कई लीलाएं किए जिससे उन्होंने साबित किया कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। हालांकि एक साधारण पुरुष की तरह भगवान बारंबार जब अवतार लेते हैं तो लीला करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि वो वैसे श्री भगवान हमेशा रहते हैं, उनके शक्ति का बल का कभी भी घटन नहीं होता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी कविराज गोस्वामी बताते हैं, सर्व अवतारे कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर वो सारे अवतारों के विष्णु रूप के स्रोत है, मूल उगम स्थान है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी की गई है, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, लेकिन अवतारी ही है श्री कृष्ण। अवतारी मतलब वो व्यक्ति जिनसे सारे अवतार उत्पन्न होते हैं, और इसलिए कृष्ण को स्वयं भगवान कहा जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण भगवान तो स्वयं भगवान है, वो अवतारी है, और बलराम जी जो है उनका द्वितीय देह है। अर्थात बलराम जी में और कृष्ण में, श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वही श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया है बलराम जी के रूप में, और उनका अंतर स्वरूप का नहीं है, व्यक्तित्व का नहीं है, केवल रंग का है। कृष्ण भगवान सांवले हैं, काले हैं, तो बलराम जी गोरे हैं, बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कितने ही रूपों में विस्तारित करते हैं। रामादि मूर्ति शुकलाना कला नियमेन तिष्ठन, कि राम इत्यादि कई कई ऐसे अनगिनत अवतार हैं भगवान के, विष्णु रूप, नारायण रूप, नरसिंह देव, वामन देव इत्यादि। तो ऐसे विस्तारित रूपों में से प्रथम रूप है बलदेव जी का, इसलिए उनको द्वितीय शरीर कहा है श्री कृष्ण का, और हमेशा श्री कृष्ण के साथ में ही रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसे अपने आप को विस्तार क्यों किया? बलदेव जी का क्या उद्देश्य है? बलदेव जी केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए रहते हैं बस, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि बलराम जी स्वयं भगवान हैं, लेकिन उनको सेवक भगवान कहते हैं, और कृष्ण सेव्य भगवान हैं, जिनकी सेवा की जाती है वो भगवान है कृष्ण। और सेवक भगवान अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं भगवान होते हुए भी, तो भगवान ही खुद अपनी सेवा करते हैं अलग रूप होकर। देखिए ये सौंदर्य है भगवान की, अद्भुतता है भगवान की लीला के। हम ऐसे कर सकते हैं? हम अपने आप को विस्तारित करके अपनी ही सेवा कर सकते हैं? नहीं, लेकिन भगवान कर सकते हैं। भगवान ने अपने आप को इतने रूप बनाए हैं, अनगिनत रूप, और इन सारे रूपों से वो अपनी ही सेवा कराते हैं। तो बलदेव जी को सेवक भगवान कहा गया है। सेवक भगवान का ये मतलब नहीं है कि हमें बलराम की सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवक भगवान कृष्ण भगवान की दृष्टि से है। हमारे लिए तो बलराम जी उतना ही पूजनीय है जितने श्री कृष्ण हैं। तो हमारे लिए तो सेव्य भगवान ही रहे वो, लेकिन कृष्ण भगवान की दृष्टि से सेवक भगवान हो जाते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण प्रेम के प्रति जो प्रेम होता है, भक्ति होती है, उसकी एक विशेष गुण ये होता है कि जो भी कृष्ण प्रेमी बन जाता है, चाहे वो कृष्ण से वरिष्ठ हो, बराबर का हो, कनिष्ठ हो, वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। भक्ति या प्रेम का ये मतलब होता है कि भक्ति में सेवा भावना प्रधान रहती है। सेवा भावना के बिना भक्ति भक्ति नहीं कहलाती है। इसलिए वृंदावन में हम देखते हैं कि नंद महाराज और यशोदा जो कि कृष्ण के माता पिता बने, वो कृष्ण से वरिष्ठ थे लेकिन फिर भी कृष्ण की सेवा करते थे। कितने वरिष्ठ गोप गोपियां थीं, वो भी कृष्ण की सेवा करते थे। उसी तरह से कृष्ण के हम उम्र के सखा थे, ग्वाल बाल थे, वो भी कृष्ण की सेवा करते थे। उनके उम्र में जो कम थे वो भी कृष्ण की सेवा करते थे। कृष्ण वृंदावन में कृष्ण को सभी प्रेम करते थे, इसलिए वहां के गाय, हिरण, वृक्ष इत्यादि, पक्षी, भ्रमर, ये सब कृष्ण को प्रेम करते थे और कृष्ण की सेवा करते थे अपने अलग अलग तरह से। तो शास्त्र में बताया जाता है, इतना ही नहीं, केवल वृंदावन के निवासी नहीं, सारे अनगिनत अवतार। कितने अवतार हैं भगवान के? जितने समुद्र में लहरें हैं। कितने लहरें हैं समुद्र में? असंख्य, अनगिनत। तो ये सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और इनमें से प्रमुख हैं बलदेव जी, बलराम जी। तो बलराम जी इस तरह से सारे वृंदावन में ऐसे सेवा के लिए एक अनुकूल व्यवस्था बनाते हैं, जिससे कि और सारे जो भक्त हैं वो अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें। इसलिए बलराम जी को जानना बड़ा आवश्यक है। बलराम जी की कृपा से ही हम कृष्ण को जान सकते हैं। बलराम जी हमें वो बल देते हैं जिससे हम ये माया के बल से परे हो सकते हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं, गुरु तत्व के मूल वो बलराम जी हैं। जो गुरु होते हैं ये संसार में, जो शिष्य को भगवान की ओर मार्गदर्शन करते हैं, वो गुरुत्व, वो तत्व जो है वो बलराम जी से आता है। इसलिए बलराम को आदि गुरु कहते हैं। तो देखिए बलराम जी का कितना महत्व होता है। इस तरह से बलराम जी के रक्षा में अगर हम रहेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए बलराम जी के बारे में हमें सुनना चाहिए, जानना चाहिए, उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। अब बलराम जी प्रकट क्यों हुए? कृष्ण के बड़े भाई थे। अभी आप देखते हैं कि बलराम जयंती में और श्री जन्माष्टमी में 8 दिन का अंतर है। पूर्णिमा में आए, प्रकट हुए बलराम जी, और अष्टमी पर प्रकट हुए श्री कृष्ण। तो बलराम जी श्री कृष्ण से 8 दिन बड़े हैं, बड़े भाई के रूप में आए। हालांकि ये छोटे भाई बड़े भाई बने, फिर भी हमें जानना चाहिए कि दोनों भगवान हैं। तो खैर, ये जानने के लिए कि बलराम जी क्यों प्रकट हुए, खास करके बड़े भाई के रूप में, हमें थोड़ी बहुत चर्चा रामायण के बारे में करने होगा। रामायण की कथा आप सब जानते हैं। रामायण में देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से अगर ये देखा जाए, बहुत दुखी दुख है। प्रभु रामचंद्र जी ने कितने दुख को सहन किया। सबसे पहले उनको वनवास में भेजा गया, उनके प्रिय पिता ने ही ये आदेश दिया, और सभी लोग, सारे निवासी जो हैं अयोध्या के, कोई नहीं चाहता था कि प्रभु रामचंद्र जी चले जाएं। केवल कैकेयी और मंथरा चाहती थी। दशरथ महाराज भी अपने हृदय में नहीं चाहते थे कि प्रभु रामचंद्र जी वनवास में चले जाएं। और लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए थे और इतने कुपित हो गए कि उन्होंने कहा कि हमारे पिता जो हैं बड़े दुष्ट हैं, एक स्त्री के प्रभाव में आकर उन्होंने धर्म का उल्लंघन किया है, इसलिए ये दंडनीय है। हे भैया, आप बिल्कुल फिक्र न करना, मैं आपको राज सिंहासन पर बिठाऊंगा और आपको वनवास में जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उस समय प्रभु रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाया, शांत कराया और कहा कि लक्ष्मण ऐसा नहीं है, जो भी हमारे पिता ने कहा है वो सही कहा है, हमारे पिताजी के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, और न ही कैकेयी देवी जो हमारी पूज्य माता जी है, नहीं उनके बारे में ऐसी बात करना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। आखिर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, संसार में प्रकट इसलिए हुआ हूं कि धर्म को बताने के लिए लोगों को, तो अगर मैं ही ऐसे कर बैठूंगा एक राज के लोभ के लिए, तो फिर मेरा कार्य जो है वो असफल रहेगा। तो उस समय लक्ष्मण ने माना नहीं, लेकिन फिर भी मानना पड़ा, क्योंकि वो छोटे भाई थे और प्रभु रामचंद्र बड़े भाई थे। खैर, निकल पड़े। जब सीता देवी साथ में आने लगी तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, लक्ष्मण आने लगे तो प्रभु रामचंद्र जी का ने कहा नहीं, लेकिन फिर भी दोनों आए और साथ में उनको जंगल का जीवन, जंगल में घूमना, भ्रमण करना, जमीन में कांटे, उनको केवल पत्तों के ऊपर, फूल फल के ऊपर जीना पड़ता था। कहीं पेड़ के नीचे सो गए, कहीं कुछ कुटिया बना ली, कोई महल नहीं, दरबार नहीं, कुछ नहीं। तो लक्ष्मण को ये सब देखकर बड़ा दुख होता था, लेकिन क्या करें, छोटे भाई थे, बड़े भाई की बात हर पल में मानना पड़ता था। और जब रावण ने सीता का भरण किया तो फिर प्रभु रामचंद्र जी इतने दुखी हुए कि बहुत शोक कर रहे थे, और उस समय लक्ष्मण को भी उनसे ज्यादा दुख हुआ। अपने पूज्य भाई को ऐसे अवस्था में देखकर लक्ष्मण को सहन नहीं हुआ और कई दिनों से, महीनों तक वो प्रभु रामचंद्र जी को शांत कराते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, अभी सुग्रीव हमारे साथ में है, हनुमान जी ढूंढने हैं, अभी हनुमान जी ने ढूंढ भी लिया है उनको, अभी हम निकल पड़ेंगे सेना लेकर। ऐसे महीने बीत गए और इस दौरान प्रभु रामचंद्र जी के शोक को देखना पड़ा। अब वास्तव में ये क्यों हुआ? अगर लक्ष्मण ने प्रभु रामचंद्र जी की बात का आदेश का उल्लंघन किया होता तो ये नहीं होता, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि तुम ठहरो, मैं जाके हिरण लेके आता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, आप यहां ठहरो, मैं जाता हूं। तो अगर लक्ष्मण जी की बात सुनी होती प्रभु रामचंद्र जी ने तो यह घटना नहीं हुई होती। लेकिन अगर प्रभु रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की बात सुनी होती तो रामायण की लीला ही नहीं होती ना, फिर रावण ही नहीं होते, फिर क्या मजा आता रामायण में। तो खैर, प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण की बात को नहीं माने, चले गए, और फिर आप सब उसके बाद में क्या हुआ जानते हैं। फिर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, उस समय लक्ष्मण को बहुत शोक आया। तो ऐसे बार बार जब भी प्रभु रामचंद्र जी के सुख के लिए लक्ष्मण कुछ करना चाहते थे तो प्रभु रामचंद्र जी उसको नकार देते थे। तो लक्ष्मण जी बड़े दुखी हो गए थे, हैरान हो गए थे, और उन्होंने अपने मन ही मन में तय कर लिया कि अगली बार जब हम दोनों पृथ्वी लोक पर अवतार लेंगे तब मैं बड़े भाई बनकर आऊंगा और उस समय मेरी बात चलेगी, क्योंकि मैं बड़ा होऊंगा और ये छोटे होंगे, और इस समय मैं जी भर के इनको सुख दे सकता हूं। अभी मैं सुख भी नहीं दे सकता क्योंकि बार बार मेरे रास्ते में बंधन अड़चन डाल देते हैं, तो इसलिए अगली बार मैं बड़ा भाई बनकर आऊंगा। इसलिए बड़े भाई या छोटे भाई, छोटे भाई या बड़े भाई, दोनों भगवान ही हैं, कभी छोटे कभी बड़े, कभी बड़े कभी छोटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लक्ष्मण जी और प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व द्वापर के अंत में। लक्ष्मण और प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए त्रेता युग में, तो उनका अगला अवतार हुआ द्वापर के अंत में। कृष्ण भगवान इनके विस्तारित रूप हैं प्रभु रामचंद्र, और बलराम जी इनके विस्तारित रूप हैं लक्ष्मण जी। तो मूल लक्ष्मण बलराम के रूप में प्रकट हुए और मूल प्रभु रामचंद्र कृष्ण भगवान वो भी प्रकट हुए वृंदावन में। तो इसलिए बलराम जी 15 दिन पहले प्रकट हुए। आप कैसे प्रकट हुए, आप सब उस लीला को जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं कि जब पृथ्वी माता बड़ी चिंतित हो गई थी द्वापर के अंत में कि मेरे ऊपर इतने सारे पाप किए जा रहे हैं, जो पापी राजाओं की संख्या इतनी बढ़ गई है और ये लोग इतना अत्याचार और पाप कर रहे हैं कि मैं ये सहन नहीं कर पा रही हूं, तो पृथ्वी माता ने गाय का स्वरूप लिया और वो चली गई ब्रह्मा जी के पास, त्राही त्राही मुझे बचाइए, क्या किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने उनकी बातें सुनी, बड़े दुखी हुए, और उन्होंने सब देवी देवताओं को साथ में लेकर वो क्षीर सागर के तट पर गए और वहां क्षीरोदक्षाय विष्णु के लिए प्रार्थना अर्पण किए, और ब्रह्मा जी के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु ने संदेश भेजा कि हे ब्रह्मा जी, चिंता न करो, सारे देवी देवताओं को आदेश दे दो कि मैं बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक पर प्रकट होने वाला हूं और दुष्टों का नाश करूंगा और मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा। और देवी देवताओं के लिए आदेश ये है कि वो लोग यदुकुल में अलग अलग परिवारों में जन्म लें और मेरी लीला में मेरा सहयोग करें। साथ साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मेरा अंश अनंत अनंत शेष वो भी जन्म लेने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, और मेरे साथ में मेरी लीला शक्ति, मेरी योग माया शक्ति भी प्रकट होने वाली है। तो ब्रह्मा जी ने यह आदेश सुना, सारी देवी देवताओं को बताया, पृथ्वी माता को बताया, सभी लोग प्रसन्न हुए, अपने अपने धाम में सभी लोग लौटकर चले गए। उधर देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा था और वसुदेव देवकी को अपने जगह ले जा रहे थे। उस समय आकाशवाणी आई और कंस उनको जो ले जा रहे थे सारथी थे, कंस ने यह आकाशवाणी सुनी और रोंगटे खड़े हो गए, भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी ने कहा कि अरे कंस, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम नहीं जानते हो कि इतने प्रेम से, लाड़ प्यार से जिस बहन को तुम उसके नए घर में ले जा रहे हो, उसी बहन का आठवां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस तो असुर था, तो जब ये सुना तो जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से वो ले जा रहा था, उसी बहन के बाल को पकड़े, अपना तलवार उठाया और उसकी हत्या करने ही वाला था कंस। उस समय वसुदेव हैरान होकर किसी न किसी तरह से रोकने का प्रयास करने लगे कंस को, लेकिन जो भी वो कुछ कहते कंस नहीं मानते। आखिर में वसुदेव ने बहुत चालाकी की और कहा कि हे कंस, देखो मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं तुम्हें वायदा देता हूं कि जैसे देवकी के कोई पुत्र होंगे, मैं उन पुत्रों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब कंस को यह मालूम था कि वसुदेव बहुत ही ईमानदार है, धर्मपरायण है, कभी झूठ नहीं बोलता, अपने शब्द का पक्का है। तो कंस का हृदय भी पिघल गया और जब पिघला तो कंस ने कहा कि मैंने बहुत नीच कार्य किया है, हे वसुदेव ले लो तुम्हारे बच्चे को, तुम वापस ले लो, तुम कितने महान हो। इस तरह से वसुदेव ने बच्चे को वापस लिया, लेकिन वसुदेव के हृदय में यह संशय हमेशा था कि किसी ऐसे असुर व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धा नहीं रख सकते। जिस व्यक्ति की इंद्रियां काबू में नहीं है उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी समय उसका मन बदल सकता है, किसी भी समय वो कुछ भी कर सकता है, संसार में हम ये देखते हैं। तो इस तरह से वसुदेव वापस घर तो चले गए, लेकिन उधर आए कौन? नारद मुनि। नारायण नारायण, अरे कंस तुम तो बड़े मूर्ख हो। अरे मैं मूर्ख हूं? क्यों? अरे तुम नहीं जानते कि देवी देवता गण अभी वृष्णि कुल में और यदु कुल में जन्म ले रहे हैं, वो एक षड्यंत्र बना रहे हैं। षड्यंत्र क्या है? कि किसी न किसी तरह से इस पृथ्वी लोक के ऊपर जो भी असुर हैं उनकी हत्या करना, ये उनका षड्यंत्र है। और इसलिए सब आए हैं, अलग अलग जगह जन्म ले रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विष्णु, तुम्हारा शत्रु। मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं, हे कंस ध्यान से सुनो, तुम पिछले जन्म में एक असुर थे और तुम्हारा उस जन्म में नाम था कालनेमी, और जानते हो तुमने, तुम्हारी हत्या किसने की? विष्णु ने की। तो वही विष्णु जो कि तुम्हारे शत्रु हैं, उन्होंने ही यह षड्यंत्र रचा हुआ है और सभी को अलग अलग यदुकुल और विष्णु किल्क परिवार में जन्म लेने के लिए प्रेरित किया है। और वैसे इस आकाशवाणी के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो हे कंस। क्यों? क्योंकि देखो आठवां कहते हैं लेकिन शुरू से एक दो तीन चार पांच है, छह सात आठ, या आठवें से एक दो तीन चार पांच। एक चक्र में जब हम ऐसे आठ किले होते हैं तो कहां से शुरू करेंगे और कहां से उसका अंत होगा? आप आगे से गिनेंगे तो पहला नंबर का एक होगा कुछ, और पीछे से गिनोगे तो पहला और कोई होगा। तो ये देवता बड़े चालाक है कंस, उनके चालाकी में फंसना मत, तुम नारायण नारायण करके चले गए। अभी नारद मुनि क्या चाहते थे? नारद मुनि चाहते थे कि जल्दी से जल्दी कृष्ण भगवान प्रकट हो जाएं। अगर कंस जैसा असुर व्यक्ति अचानक दयालु व्यक्ति बन जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और सारे असुर अगर दयालु बन जाए तो फिर कृष्ण के अवतार लेने का कोई कारण ही नहीं रहा। तो नारद जी बड़े उत्सुक थे कि जल्दी से जल्दी भगवान यहां पर आए। तो उधर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया, अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और कहने लगे कि हे योग माया देवी, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गो गोभीर अलंकृतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। वो कहने लगे कि सुनो हे देवी हे भद्रे, जिसकी वजह से सारा कल्याण सारे सृष्टि में होता है, तुम गच्छ व्रजे, तुम जाओ व्रज धाम में, वृंदावन में जाओ। वृंदावन में क्या होता है, कौन है वहां पर? गोप गोभीर अलंकृतम। वहां ब्रज का अलंकार क्या है? ब्रज का जो गांव है वो किस चीज से अलंकृत है? गोप गोपियों से और गायों से, गाय बैलों से। आजकल हमारे शहर किन वस्तुओं से अलंकृत होते हैं? बड़े बड़े कारखानों से, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों से, अट्टालिकाओं से, कचरे के डब्बों से, शराब के अड्डों से। ये है हमारे शरीर का सौंदर्य। लेकिन वृंदावन का अलंकार क्या था? वृंदावन का सौंदर्य कृष्ण भगवान कहते हैं गोप गोभी ही अलंकृतम। और वहां जाओ इस सुंदर व्रज में, रोहिणी वासुदेवस्य भार्या, वसुदेव की भार्या, उनकी पत्नी, एक पत्नी रोहिणी वहां नंद गोकुले, नंद महाराज के शरण में, आश्रम में निवास कर रही हैं। तो वहां जाओ, वहां जाके क्या करना? मैं देवकी के गर्भ में प्रकट होने वाला हूं, देवक्या जठरी गर्भम, और मुझे और मेरे अंश के रूप में, अनंत शेष के रूप में मैं देवकी के गर्भ में प्रकट होने वाला हूं। तो देवकी के गर्भ से अनंत शेष को आकर्षित करके तुम स्थानांतरित करना रोहिणी देवी के गर्भ में। और इसलिए अनंत शेष देवकी का गर्भ मेरे लिए तैयार करेंगे और फिर मैं देवकी के गर्भ में प्रकट होऊंगा। और साथ साथ तुम वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में यशोदा देवी के गर्भ से प्रकट होना, तो तुम मेरी बहन बनके इस संसार में प्रकट होगी और सभी लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे, क्योंकि तुम बहुत निपुण होगी सारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने। इच्छाओं की पूर्ति जल्दी से होती है, कृष्ण भगवान के पास बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान भक्ति देते हैं। तो इस तरह से हे भद्रे, हे योग माया देवी, तुम इस तरह से वहां ये स्थानांतरित करना अनंत शेष को, और वहां अनंत शेष का जन्म होगा और वो अनंत शेष वो अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। उनका नाम होगा राम, क्योंकि सारे ब्रह्मांड को आकर्षित करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए उनमें क्षमता है, इसलिए उनका नाम होगा राम। उनके अंदर अद्भुत शक्ति होगी, इसलिए उनका नाम होगा बल। और उनके अंदर, और क्योंकि उनका आकर्षण करके, देवकी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी देवी के गर्भ में स्थानांतर हुआ है, इसलिए उनका नाम होगा संकर्षण। तो हे देवी, जल्दी से जाओ और अपनी सेवा करो। तो उस समय योग माया देवी ने तीन बार प्रदक्षिणा की भगवान के और फिर नमस्कार करके वहां चली गई। और उधर देवकी के गर्भ से जब स्थानांतरित किया उस शिशु को, उस बालक को, तो हाहाकार मच गया मथुरा में। सभी लोग कहने लगे, अरे देवकी के गर्भ को क्या हो गया, कहां चला गया देवकी का गर्भ? और सभी ने सोचा कि गर्भपात हो गया। और फिर सभी लोग शोक कर रहे थे, देवकी भी शोक कर रही थी। और उधर देवकी, अभी देवकी का गर्भ कृष्ण के आविर्भाव के लिए तैयार हो गया था। तो देखिए ये महत्व की बात है कि बलराम जी पहले आते हैं, हृदय को तैयार करते हैं, स्थान को तैयार करते हैं और फिर कृष्ण चले आते हैं। तो इस तरह से बलराम जी को पहले आने का महत्व ये था कि सब व्यवस्था करके जाना चाहते थे बलराम जी। तो उधर गोकुल में 5 दिन के बाद ही बलराम जी प्रकट हुए। जब से उनका स्थानांतर हुआ रोहिणी देवी के गर्भ में, केवल 5 दिन के बाद वो प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो बड़े हर्ष उल्लास से नंद महाराज ने बलराम जी का जन्म दिवस मनाया। 10 लाख गायों को दान दिया ब्राह्मणों को, और सारे गोप गोपियों को निमंत्रण दिया, और वहां बड़े बड़े अनुष्ठानों की योजना की, गीत संगीत वहां बाज बाजे बहुत कुछ हुआ। और उस समय जगह जगह से वास्तव में ब्रह्मांड भर से ऋषि मुनि आए भगवान श्री बलराम जी का दर्शन करने के लिए। उनमें से थे वेद व्यास जी प्रमुख थे, नारद जी आए, बृहस्पति, देवल, देवरात, बृहस् इत्यादि सारे सब आए उधर, और सब भगवान के दर्शन के अभिलाषी थे। वो सब जब आए प्रकट हुए नंद रोहिणी देवी के घर में, तो उस समय नंद महाराज ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, स्वागत किया, और जब वेद व्यास जी के चरण कमल उन्होंने धोए तो वेद व्यास जी प्रसन्न हुए। उस समय नंद महाराज ने वेद व्यास जी से पूछा कि हे मुनिवर, कृपा करके ये बताएं कि ये अद्भुत बालक जिसका सौंदर्य अद्भुत है, जिसका बल अद्भुत लग रहा है, और जो केवल 5 दिन में गर्भ में प्रवेश करने के पश्चात जन्म लिया है, ये कौन है, कैसे इसका जन्म इस तरह से हुआ है, कृपा करके मुझे ये बताएं। तो वेद व्यास कहने लगे कि हे नंद, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा भाग्य बड़े बड़े योगियों से भी अधिक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, छोटा सा बालक, वो परम भगवान है, वो स्वयं अनंत शेष संकर्षण है, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण करते हैं, जिस तरह मानो कि वो रुई के दानों को धारण किए हुए हैं, वही अनंत शेष, वही संकर्षण अभी बाल रूप में तुम्हारे घर में आया है, रोहिणी देवी के गर्भ से प्रकट हुआ है। कृष्ण भगवान की इच्छा से वो देवकी के गर्भ में आए अनंत शेष, वासुदेव के माध्यम से, और फिर योग माया के माध्यम से उनका स्थानांतरित हुआ रोहिणी देवी के गर्भ में। इसलिए हे नंद, कृपा करके जल्दी से इस बालक का दर्शन हमें कराओ, हम यहां इसको देखने के लिए आए हैं। तो जल्दी से नंद महाराज ने बालक को लाया, और वेद व्यास जी और अन्य मुनियों ने देखा, बड़े विस्मित रह गए, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे इस बालक का अद्भुत सौंदर्य। तुरंत सब लोग दंडवत प्रणाम कर दिए उस बालक को, और वेद व्यास जी सुंदर प्रार्थना करने लगे इस बालक के प्रति, और ऐसे प्रार्थना करके फिर 100 बार परिक्रमा किया इस बालक का, और परिक्रमा करके वो वहां से चल पड़े। उधर थोड़े दिन बाद में ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। कृष्ण भगवान का कैसे जन्म हुआ ये हम जन्माष्टमी के अवसर पर सुनेंगे, लेकिन जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए बलराम जी के 8 दिन बाद, तो नंद महाराज सोच रहे थे कि अभी मेरे घर में 2 शिशु आए हैं, अब इनका नामकरण संस्कार भी करना चाहिए, और भी संस्कार कितने किए जाते हैं सभ्य समाज में वो भी करने चाहिए। तो तैयार हुए, और अचानक वसुदेव से, भगवान श्री कृष्ण से हृदय में प्रेरित होकर यदुकुल के पुरोहित जो थे गर्ग मुनि, वो मथुरा से गोकुल में आए, और जब नंद महाराज ने उनको देखा तो उनके पैरों में पड़े, प्रार्थना की और कहा कि हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, मेरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि आप जैसे ऋषि मुनि हमारे घर में आए। हम जैसे गृहस्थ जो होते हैं वो हमेशा संसार के विषयों में अटके पड़े रहते हैं, लेकिन आप जैसे मुनि जब आते हैं, ब्राह्मण संत आते हैं हमारे घरों में, तो हमारे घरों को पावन कर देते हैं। आपका कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल हमारे उद्धार के लिए आप आते हैं, तो कृपा करके बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मेरे इन 2 सुंदर बालकों का नामकरण करें। उस समय गर्ग मुनि कहने लगे कि हे नंद, देखो मैं यदुकुल का पुरोहित हूं, और कंस इस बात को अच्छी तरह से जानता है, और ये भी जानता है, क्योंकि योग माया देवी ने आकाश में जाकर कंस से ये बात कही थी कि हे मूर्ख कंस, तुम नहीं जानते कि जिस बालक की हत्या तुम करना चाहते हो उसका जन्म कहीं और हो चुका है। तो कंस को ये ज्ञात है कि कृष्ण कहीं और जन्म ले चुके हैं, और उनको ये भी मालूम है कि कहीं पास में जहां यदुकुल के लोग हैं वहीं पर उसका जन्म हुआ है। तो इसीलिए अगर मैं खुले आम ये नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को पता चलेगा, क्योंकि मैं यदुकुल का ही पुरोहित हूं और मैंने यहां नामकरण संस्कार किया तो वो जानेंगे कि कृष्ण और बलराम अवश्य यहां पर हैं, इसलिए बहुत कष्ट होगा। तो नंद महाराज ने कहा कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, तो हम ऐसा क्यों न करें, हमारे गोष्ठ में गौशाला में जाते हैं और गौशाला के भीतर चुपचाप किसी को निमंत्रण न देते हुए आप कृपा करके नामकरण संस्कार कीजिए हमारे दोनों बालकों का। तो गर्ग मुनि ने कहा तथास्तु। और उस समय गर्ग मुनि ने यह श्लोक का उच्चारण किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण ही आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदुहु यदुनाम अपृतक भावा संकर्षणम उशंत्यपि। उन्होंने कहा कि हे नंद, इस बालक के तीन नाम रहेंगे, एक है राम, क्योंकि सारे गोकुल को निवासियों को वो आकर्षित करेगा अपने सुंदर लीलाओं से, अपने सौंदर्य से, अपने दिव्य गुणों से। और उसका नाम बल रहेगा, क्योंकि वो इतना अद्भुत उसकी शक्ति होगी, कई असुरों को नाश करेगा वो, और अद्भुत शक्ति के प्रदर्शन की वजह से उसका नाम बल होगा। और संकर्षण इसका नाम इसलिए होगा कि आपके और वसुदेव के दो परिवार को वो मिलाएगा। और जब कृष्ण भगवान ने योग माया को उपदेश दिया था, आदेश दिया था, उस समय उन्होंने संकर्षण शब्द का अर्थ क्या बताया था कि संकर्षण इसलिए उनका नाम आएगा बलराम जी का, क्योंकि उनका आकर्षण हुआ है देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी देवी के गर्भ में। लेकिन गर्ग मुनि और एक अर्थ बता रहे हैं संकर्षण का, वो क्या कहते हैं, संकर्षण मतलब जो दोनों कुटुंबों को आकर्षित करके मिला देते हैं। अब देखिए ये इतिहास जानने लायक है। वसुदेव के पुत्र थे, उनके पिता का नाम था शूरसेन, वृष्णि वंश के थे। तो शूरसेन क्षत्रिय थे, शूरसेन की पत्नी भी क्षत्रिय थी, इसलिए वसुदेव भी क्षत्रिय हुए। वसुदेव ने देवकी से विवाह किया, देवकी भी राजा देवक की पुत्री, वो भी क्षत्रिय परिवार की थी। तो वसुदेव भी क्षत्रिय, देवकी भी क्षत्रिय, इसलिए वो क्षत्रिय कहलाते हैं। अभी नंद महाराज वो भी शूरसेन के पुत्र थे, लेकिन एक वैश्य पत्नी के माध्यम से। इस तरह से दोनों भाई रहे, वसुदेव और नंद महाराज, लेकिन अलग अलग रानियों से। वसुदेव की मां एक क्षत्रिय रानी थी और नंद महाराज की मां वैश्य थी, वैश्य परिवार से थी, लेकिन दोनों के पिता थे शूरसेन। और नंद महाराज ने यशोदा देवी से विवाह किया, जो कि एक वैश्य परिवार से थी। तो इसलिए नंद महाराज अभी वैश्य का कार्य संभाल रहे थे। इसलिए कृष्ण और बलराम प्रकट हुए तो उन्होंने भी वैश्य का काम किया। वैश्य का काम क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वो कृषि करते हैं, गोरक्षा करते हैं और वाणिज्य करते हैं। वाणिज्य किस चीज में, दही दूध घी इन चीजों में। तो इसलिए कृष्ण भगवान बांसुरी बजाकर गायों को चराया करते थे, गायों की रक्षा करते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हुए गोरक्षा के स्वरूप। और बलराम जी का के हाथ में क्या हुआ करता था, हल। हल का प्रयोग कहां होता है, कृषि में। इसलिए कृषि रक्षा के लिए आए बलराम जी। तो गोरक्षा कृष्ण करने आए और कृषि रक्षा बलराम जी करने आए। तो दोनों अपने आप को वैश्य समझ रहे थे, क्योंकि वो वैश्य परिवार में जन्म लिया उन्होंने। तो इस तरह से गर्ग मुनि बता रहे हैं कि बलराम जी वास्तव में हैं देवकी के पुत्र और वसुदेव के पुत्र, क्षत्रिय हैं, लेकिन अभी आपके यहां आए हैं, रोहिणी देवी के पुत्र के रूप में आए हैं, इसलिए आपके दोनों के परिवारों को वो मिलाएंगे, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। तो इस तरह से वास्तव में जैसे गर्ग मुनि ने बताया था वैसे ही हुआ। दोनों कृष्ण और बलराम जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे दिन बीतते थे, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। और बलराम जी के साथ में गायों को चराते थे श्री कृष्ण, असुरों का वध करते थे, गोप गोपियों को आनंद देते थे, और ऐसे कई लीलाएं हैं, इनका वर्णन दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत के आता है। जब कृष्ण और बलराम पौगंड अवस्था में थे, अर्थात 6 वर्ष के थे, तो वो गायों को लेकर जाया करते थे। पांच साल की उम्र तक वो केवल ग्वाल बालों को, वत्सों को, गाय के बछड़ों को ले जाया करते थे चराने के लिए। लेकिन जब उनकी आयु 6 साल की हो गई तो फिर वो पूरे पूरे बड़े गायों को ले जाते थे चराने के लिए। तो इस तरह से एक दिन बलराम, कृष्ण और गोपगण सारे अपने अपने गायों को लेकर वन में जाने लगे, जैसे कि रोज जाया करते थे। उनका काम वही हुआ करता था, जैसे हमारे यहाँ समाज में बच्चे हर रोज सुबह स्कूल को जाते हैं, वैसे वृंदावन में कोई स्कूल की आवश्यकता नहीं थी, केवल गायों को चराकर वन में ले जाते थे। तो इस तरह से कृष्ण भगवान हमेशा जाते जाते और लौटते अपनी बांसुरी बजाया करते थे, अनाउंसमेंट करते थे, घोषणा करते थे कि हम जा रहे हैं या हम आ रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी बाहर आते थे, अपने खिड़की से देखते थे, दरवाजे से देखते थे इस सुंदर दृश्य को, कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में गायों को लेकर चले जा रहे हैं वन में उनको चराने के लिए। और कृष्ण भगवान झूमते हिलते नृत्य करते हुए जाते थे, और आगे जब वन में प्रवेश कर लेते तो बीच बीच में कृष्ण भगवान नृत्य करने लग जाते, 6 साल के बालक। और उस सुंदर नृत्य को देखकर सारे ग्वाल बाल ताली बजाना शुरू कर देते, कोई बांसुरी बजाना शुरू कर देता तो कोई ताल बजाना शुरू कर देता। ग्वाल बालों के पास हमेशा एक बाजा होता था जो कि भैंस के सिंह का बना हुआ होता था, तो वो कोई बजाते, और कोई ग्वाल बाल कहते वाह कृष्ण कितना सुंदर नाच किया है तुमने। और कभी कभी ग्वाल बाल नाचते थे तो कृष्ण और बलराम ताली मारते थे, अरे वाह वाह सुदामा कितनी अच्छी नाच नृत्य किया है तुमने। तो इस तरह से ये लीला करते रहते थे नृत्य का। सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि किस तरह की क्रीड़ा खेलकूद किया करते थे, ये सुनने लायक है। क्योंकि परम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उगम स्थान यहां आकर वृंदावन में साधारण बच्चों की तरह खेलकूद कर रहे हैं। कभी कभी वो ऊंचा कूदते थे, देखते थे कि कौन सबसे ऊंचा कूद सकता है। कभी कभी वन में जाके वो घूमते थे जोर से, इतना घूमते थे कि कभी कभी चक्कर आ जाता था और गिर जाते थे। और कभी कभी वो एक दूसरे के पीठ को थपथपाते थे, कभी कभी कोई फल लेकर कोई पत्थर लेकर दूर फेंकते थे कि कौन ज्यादा फेंक सकता है, कभी कभी एक दूसरे के बाल खींचते थे, कभी कभी एक दूसरे के साथ कुश्ती करते थे, और कभी कभी जाकर वो फलों के साथ में भी खेलते थे, जैसे आमला की फल या तो फिर बेल का फल इत्यादि। वहां तो फुटबॉल वगैरह नहीं हुआ करता था, तो इनके साथ में फुटबॉल खेला करते थे। कभी कभी एक बालक एक फल को ऊपर फेंकता और दूसरे बालक दूसरे फल को लेकर उस फल को मारने की चेष्टा करता। तो इस तरह से लीला करते थे। कभी कभी नेत्र बंद की लीला भी करते थे, कोई बालक आता किसी दूसरे बालक के पीछे आंख बंद कर देता और केवल हाथ के स्पर्श से उस पहले दूसरे बालक को बताना पड़ता कि कौन है। कभी कभी वो यमुना जी के तट पर भी लीला करते थे, जब गोपियां उस ओर जाना चाहती थीं एक घाट के ऊपर, तो वहां एक कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो वहां पर ग्वाल बाल कृष्ण बलराम इत्यादि खड़े हो जाते थे और वहां खड़े होकर जो साधारण भाषा में बोली जाए तो दादागिरी करते थे कि अरे यहां हमें कर देना पड़ेगा। तो गोपियां कहती थी हम तुमको क्यों देंगे कर, तो झगड़ा होता था। फिर उनके दूध के वो मटके हैं तोड़ देते थे, चोरी कर लेते थे, भाग जाते थे। ये 6 साल की उम्र में कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ में ये लीला करते थे। जब दोपहर के समय कृष्ण भगवान और बलराम जी आराम किया करते थे तो उस समय दूसरे ग्वाल बाल जाके गोपियों जो कि मटके में दूध दही ले जाती थी उनको पूछते थे क्या भाव है दूध का, और गोपियां कुछ भाव बोलती थी तो गोप कहते थे ये तो बहुत ज्यादा है, और वो भी इतने बेकार दही के लिए, इतना दूध के लिए। फिर दोही चोरी करके फिर वो ले जाया करते थे। इस तरह की लीलाएं करते रहे। कभी कभी वो मेंढक की नकल किया करते थे, जल में कूद जाते। कभी कभी वो पक्षियों का नकल करते, कभी कभी और किसी पशु का नकल करते। इस तरह से वृंदावन का वातावरण बड़ा रम्य हुआ करता था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उस समय जब बलराम और कृष्ण गायों को लेकर जाते थे तो वृंदावन का क्या वातावरण होता था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वहां पे सब जगह झरने थे, जिसमें से झरझर 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 पानी निकलता था और इस झरझर की आवाज से सारे जो कीड़े हैं जो कट 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 आवाज करते हैं उनका आवाज ढक जाता था। तो वृंदावन का जो जंगल है वन है ऐसे ध्वनियों से हमेशा अलंकृत रहता था, साथ साथ में पक्षियों की जैसे कोयल मोर इत्यादि हंस इनके कू 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 की मधुर वाणी भी सुनाई पड़ती थी। आजकल हमारे शहर कैसे ध्वनियों से अलंकृत हैं, जैसे हम यहाँ सुनते हैं पॉम्प पूरी रेलगाड़ी की आवाज कोई मोटर कार की आवाज, लेकिन वृंदावन में कितना रम्य था, ऐसे मधुर आवाजें आया करती थी। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि झरनों से जो जल बिखर जाता था जल के बूंद वो जाकर सब जगह वृक्षों को गीले कर देते थे और गीले इसलिए सारे वृक्ष जो है बहुत सुंदर दिखाई पड़ते थे और भी जगह जगह में सुंदर सुंदर पुष्प जो है खास करके कमल पुष्प अलग अलग रंगों के वो नदियों में और कुंडों में बिखरे हुए होते थे और जो वहां का पवन जो हवा होता था वो हवन इन अलग अलग पुष्पों के रेणु को बिखार देती सब जगह और इस तरह से सारे वृंदावन में एकदम शीतल वातावरण हो जाता था। और एक विशेष बात यह है जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि क्योंकि कृष्ण और बलराम स्वयं उपस्थित थे वृंदावन में उस जंगल में इसलिए बीच गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु में वसंत ऋतु के लक्षण प्रकट हो रहे थे। ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी किसी को अच्छा नहीं लगता जब बहुत गर्मी होती है, लेकिन क्योंकि कृष्ण और बलराम वहां उपस्थित थे तो पृथ्वी माता ने क्या किया कि ग्रीष्म ऋतु को बदलकर उसे वसंत ऋतु किया केवल वृंदावन में, इसलिए बहुत ही मधुर और रम्य वातावरण हो गया, सारे वसंत ऋतु के लक्षण प्रकट होने लगे। तो इस तरह से ऐसे वातावरण में कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के संग चलते गए। कभी कभी क्या करते थे, कभी कभी कहते थे कि हमें कुश्ती करनी चाहिए और जो पक्ष हार जाता है उनको इस पक्ष की सेवा करनी चाहिए और इस तरह से एक दूसरे को कंधे पे उठा देते, ऐसे इनकी लीला चलती रहती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक ग्वाल बाल है और तुरंत कृष्ण भगवान समझ गए क्योंकि वो तो त्रिकालज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि ये ग्वाल बाल वास्तव में ग्वाल बाल नहीं है, वेश बदल कर आया है, वास्तव में ये एक असुर है जिसका नाम है प्रलंबासुर और इसको कंस ने भेजा है वृंदावन में मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो कृष्ण भगवान चुपचाप रहे, अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि इसका वध कैसे किया जाए, लेकिन बाहर से इस बात को प्रकट नहीं किया कि वो जानते हैं। तो तुरंत अपने ग्वाल बाल मित्रों के पास में गए, हे गोपगण आओ आओ सभी लोग अभी कुछ खेलते हैं, अभी हम दो पक्ष बनाते हैं आधे आधे, तुम लोग इधर हम लोग इधर और हम कुछ खेलेंगे। तो सारे ग्वाल बालों ने मिलकर कृष्ण भगवान को एक पक्ष का नेता बनाया और बलराम को दूसरे पक्ष का नेता बनाया और फिर खेलकूद नाना प्रकार की चालू हो गई। और जब खेलकूद चालू हो गई तो शर्त ये था कि जो व्यक्ति हारेगा वो दूसरे ग्वाल बाल को अपने कंधों पर उठाएगा और ले जाएगा। तो इस तरह से कृष्ण भगवान के पक्ष में जो थे वो हार गए और बलराम जी के पक्ष में तो छे वो जीत गए। तो इसलिए कृष्ण भगवान के साथ में जो ग्वाल बाल थे वो बलराम जी के पक्ष में जो गोप थे उनको उठाने लगे। भद्रसेन ने जो है वृषभ को कंधे पे ले लिया, श्रीदामा ने बलराम वो कृष्ण भगवान को की सेवा ऐसे की कंधों पे ले लिया और बलराम जी देख रहे थे कि अभी क्या किया जाए। बलराम जी भी उस समय जान गए थे लेकिन उनको सही तरह से मालूम नहीं था। उस समय प्रलंबासुर ने देखा कि मुझे कृष्ण के साथ में युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि कृष्ण भगवान बड़े शक्तिशाली हैं, पहले रिपोर्ट सुन चुके थे कि कृष्ण ने कितने असुरों का वध किया है। तो फिर वो बलराम जी के पास आए कि पहले बलराम से निपटा लूंगा फिर बाद में कृष्ण के पास आऊंगा। तो प्रलंबासुर भी कृष्ण के पक्ष में थे, जो हार गए थे। तो जहां श्रीदामा कृष्ण के कंधे पे बैठे थे, तो उसी तरह से बलराम जी जो है प्रलंबासुर के कंधे पे बैठ गए। दिखने में बिल्कुल ग्वालबाल जैसे थे। तो प्रलंबासुर ने क्या किया, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी से वो उन ग्वाल बालों के बीच से कहीं और दूर भागने लगे। बलराम सोच रहे कोई मजा है, चल रहा है, पता नहीं क्या है, आनंद लेने लगे। और अचानक फिर वो आकाश में उड़ने लगा प्रलंब, क्योंकि ये सारे जो असुर होते थे उस समय, इनके ये सारे योग शक्तियां हुआ करती थी, और इन योग शक्ति के बल पे वो अपना रूप भी बदल सकते थे, और वो आकाश में उड़ सकते थे, अपने आप को छोटा बड़ा बना सकते थे। तो प्रलंबासुर जब ऊंचा उड़ने लगा, तो बलराम जी ने सोचा कि अभी मुझे भारी बनना पड़ेगा, तो अगर ये शेर तो ये सवा शेर, अगर ये असुर भी योगी होते हैं तो बलराम जी भी योगेश्वर हैं, कृष्ण, कृष्ण का और एक नाम है योगेश्वर, योग की शक्ति प्रदान करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। तो बलराम जी ने अपने आप को सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा भारी बना दिया, और प्रलंबासुर को पता नहीं चला कि अचानक इसका वजन कैसे बढ़ गया, और वजन को सहन करते करते पसीना छूट गया, और इतने वजनदार हो गए बलराम कि प्रलंबासुर अपने इस रूप को धारण नहीं कर पाए। जब ये योगी, ये असुर अपने योग शक्ति से अपना रूप बदल देते हैं, तो जब इनके योग शक्ति का सामना भगवान की दिव्य शक्ति से होता है, तो इस नए रूप को वो ज्यादा समय तक रख नहीं पाते। आपको स्मरण होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, तो पूतना ने भी अपना रूप बदल दिया था, पूतना ने अपना रूप एक सुंदर स्त्री का बना लिया था, और सभी लोग वहां वृंदावन में सोच रहे थे कि ये कौन है, ये स्वर्गलोक की देवी है, कोई अप्सरा है, कहां से आई है ये, इतनी सुंदर महिला थी, और किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, हालांकि वो अजनबी थी, कोई पहचानता नहीं था उसको, कृष्ण का इतना लाड़ प्यार करते थे सभी लोग, लेकिन ये महिला अंदर आई, सीधे अंदर चली गई, कृष्ण भगवान को उठाया, अपने गोदी में लिया और स्तनपान करना आरंभ कर दिया। तो उस समय कृष्ण भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो कृष्ण भगवान ने जब स्तनपान करना आरंभ किया, तो ऐसे स्तनपान किया कि पूतना के स्तनों से दूध का पान तो किया, साथ साथ पूतना के प्राण भी खींच लिए, और पूतना बड़े दुख में, बड़े कष्ट में चीखने लगी कि हे बालक मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। और उस समय वो भागती हुई नंद महाराज के घर से बाहर गई जंगल की ओर, क्योंकि वे जानते थे कि अब मैं इस रूप को रख नहीं पाऊंगी। और जैसे ही वो वन में पहुंची, तो अपना जो मूल रूप है वो धारण किया, क्योंकि अपने योग शक्ति को कृष्ण के बल के सामने वो रख नहीं पाई। और पूतना का असली रूप क्या था, एक विशाल राक्षसी का, बड़ा क्रूर उग्र रूप, इतने बड़े 8 मील लंबा शरीर था पूतना का। और आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध तो कर ही दिया। तो ठीक उसी तरह से प्रलंबासुर भी अपना बनाया हुआ रूप धारण नहीं कर पाए, प्रलंबासुर का असली रूप प्रकट हो गया। और जब असली रूप प्रकट हुआ, तो बलराम जी ने देखा आखिर एक साधारण ग्वाल बाल की लीला कर रहे थे, तो बाहरी रूप से चिंता प्रकट करने लगे, मानो कि वो डर गए हैं। अगर कोई छोटे से बालक को कोई दूसरा आदमी उठा ले जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा घबरा जाएगा। तो बलराम जी भी एक साधारण बालक की लीला कर रहे हैं, तो वो भी भयभीत हो गए कि अरे ये कौन है, ये क्या हो गया, ये कौन भयंकर आदमी है जिसके इतने उग्र स्वरूप इसका है, लाल लाल आंखें हैं, बड़े बड़े बाल हैं, और दांत भी देखो ऐसे लंबे लंबे, ये कौन है। ऐसे लग रहा था उस समय, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कि जब आकाश में प्रलंबासुर बलराम को लिए जा रहा था, तो प्रलंबासुर एक बादल की तरह लग रहा था, और उसके शरीर पे जो सोने के आभूषण थे वो बिजली की तरह लग रहे थे, और बलराम जो कि उनके कंधे पे बैठे हुए थे, बलराम जी चांद की तरह लग रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि मानो आकाश में बादल है जिसमें बिजली चमक रही है, और इस बादल के भीतर से चांद दिखाई पड़ रहा है, ये सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा था। और उस समय बलराम जी की चिंता का कारण क्या था? एक तो कारण ये था कि ये बड़ा असुर है, दूसरा कारण ये था कि बलराम जी सोचने लगे कि ये तो कृष्ण के पक्ष में था, कृष्ण का मित्र था, तो कृष्ण ने उसको स्वीकार किया, अब मैं उसको मारूंगा तो फिर कृष्ण को दुख होगा, तो बड़े दुविधा में पड़ गए। और चिंता का तीसरा कारण यह था कि अगर ये वास्तव में असुर है, कुछ बुरे इरादे लेकर आया है, तो मुझे यहां से दूर ले गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा असुर वहां कृष्ण के पास में जाया होगा, गया होगा, तो वहां कृष्ण के लिए भी खतरा है। तो फिर बलराम ने सोचा कि जल्दी से इस बात को निपटा देना चाहिए। तो कृष्ण बलराम जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से, मुट्ठी से प्रलंबा असुर के सर के ऊपर प्रहार किया, मुक्का प्रहार किया। अभी बलराम जी के छोटे से नन्हे नन्हे हाथों से प्रहार तो किया, लेकिन प्रलंबासुर को लगा कि जैसे कोई विशाल जो बिजली है वो आके उसके सर पर लग गई है। जिस तरह से इंद्रदेव अपने वज्र अस्त्र से बिजली चलाते हैं और बड़े बड़े पहाड़ों को चूर चूर कर देते हैं, उसी तरह से बलराम जी के केवल स्पर्श मात्र से उस असुर का सर जो है वो फूट गया और फिर वो नीचे गिर पड़ा। और उस तरह से बलराम जी ऊपर हवाई ऊपर नीचे ओके, जैसे यहां बच्चे लोग करते हैं मेला में ऊपर नीचे जाते हैं, तो बलराम जी भी नीचे आ गए और फिर सारे ग्वाल बाल दौड़ते हुए वहां आ गए। वाह 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 बलराम, कितनी अच्छी बात तुमने, क्या अच्छा कार्य किया है तुमने, ऐसे असुर का वध किया। सब लोग शाबाशी देने लगे और ऊपर से देवी देवतागण जो कि बादलों के पीछे छुप कर देख रहे थे, उन्होंने भी फूलों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। इस तरह से प्रलंबासुर नाम के राक्षस का वध बलराम जी ने किया। बलराम जी ने और कई असुरों का वध किया, लेकिन उन सब का वर्णन आज करने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर रूप से इसका वर्णन है। कृपा करके इन ग्रंथों को पढ़िएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने इन सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, इनका अध्ययन करके बहुत सरल भाषा में हम सबके लिए प्रस्तुत किया है। तो कृपा करके इन ग्रंथों को पढ़िए, कृष्ण लीला बलराम लीला का आनंद लीजिए, अपने चित्त का शुद्धिकरण कराइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो बलराम जी के नाम का उच्चारण तो हम लोग हर रोज करते हैं। हम जब ये महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये प्रश्न आता है कि ये राम शब्द जो है वो कौन से राम को संबोधित करता है। कई लोग कहते हैं कि ये राम मतलब दशरथ नंदन दशरथ सुत राम, अयोध्या वाले राम। कई लोग कहते हैं ये तो जमदाग्नि सुत परशुराम है, और कई कहते हैं कि ये तो रोहिणी नंदन बलराम जी हैं। तो कौन सा सही है? तीनों सही है, अपने अपने भाव के अनुसार। वास्तव में ये राम का शब्द कृष्ण भी हो सकता है, राधिका रमण राम वो भी कृष्ण है। तो हरे कृष्ण में जो कृष्ण है वो तो कृष्ण है ही, साथ साथ जो राम है वो राम कृष्ण हो सकते हैं, बलराम हो सकते हैं, प्रभु रामचंद्र हो सकते हैं या परशुराम हो सकते हैं। जैसे जैसे भक्त की भावना होती है वैसे वैसे वो राम शब्द को समझता है। कि हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने बताया है कि अलग अलग भावना के हिसाब से कृष्ण को भी हम देख सकते हैं राम शब्द में। इस तरह से हरे कृष्ण हरे राम जब ये मंत्र हम करते हैं तो वास्तव में हम बलराम जी का भी स्मरण करते हैं और कृष्ण भगवान का भी स्मरण करते हैं। तो आज बलराम जी के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष में हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा करें, हमें आध्यात्मिक बल दें, हमें वो सद्बुद्धि दें कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहें। वो कृपा अवतार हैं, आदि गुरु हैं, बलवान हैं, और उनकी सेवा करेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम भी बलवान हो जाएंगे। हाँ, भक्ति मार्ग में आने से शरीर तो तंदुरुस्त होता है, आत्मा मन भी तंदुरुस्त हो जाता है। इस तरह से भगवान श्री हरि श्री कृष्ण और बलराम के भक्तों के संग में आकर उनका गुणगान हमें करना है, सुनना है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो श्री कृष्ण बलराम की, श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। आपके कोई प्रश्न है? हमने यमुना आकर्षण की लीला बताई सबसे पहले कि बलराम जी ने यमुना जी को आकर्षित किया अपने हल से। अब जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, प्रकट हुए, ठीक उसी तरह से भगवान श्री बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के संग में बैठे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही यमुनाकर्षण लीला वहां पे कर ली। एक बार भावावेश में आकर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, मुझे मधु लाओ, मधु लाओ। और सभी लोग समझ गए कि ये अभी बलराम जी के भाव में हैं। और नित्यानंद प्रभु जो कि वास्तव में बलराम है, उन्होंने जल्दी से जाकर गंगा जी का जल वो लाए और चैतन्य महाप्रभु को दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने जल का पान किया ये समझकर कि ये वारुणी है, और उस समय अपना हल लेकर वो यमुना का आकर्षण करने की लीला कर रहे थे। उस समय अद्वैत आचार्य ने देखा ये साक्षात बलराम का रूप धारण उन्होंने ग्रहण कर लिया है, और एक भक्त थे उन्होंने देखा कि वास्तव में एक सोने का हल जो है चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर है। तो उस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने इस ये यमुना आकर्षण लीला फिर से अपने भक्तों के लिए किए। तो वही कृपा जो कृष्ण बलराम अभी दे रहे हैं वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हमें भी मिल रहा है। ये बड़े पावन अवतार हैं, पतित पावन अवतार हैं। ये कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए खास बड़े कृपालु अवतार हैं। कृष्ण और बलराम तो कृपालु हैं ही, लेकिन वो शरणागति चाहते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु और बलराम जी और चैतन्य महाप्रभु केवल ये कहते हैं कि केवल हरि का नाम लो। उन्होंने इस महामंत्र हरिनाम के संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन किया। और चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु है नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार हैं। इसलिए हमें जिस तरह से कृष्ण बलराम का आश्रय लेना चाहिए, उसी तरह से हमें चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु का आश्रय भी लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़े कृपालु रूप हैं चैतन्य कृष्ण और बलराम के। इसे नित्यानंद प्रभु को नित्यानंद राम कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इस तरह से हमें दोनों को पहचानना चाहिए, वही श्री कृष्ण और वही श्री बलराम जो उस तरह से वृंदावन में, द्वारका में इत्यादि लीला कर रहे थे, वो 500 वर्ष पूर्व ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए नदिया में, बंगाल में, और उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू किया। जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और कीर्तन करते हैं तो हम उनके संकीर्तन के आंदोलन
जले धृतवान शिवेदम विहृतवहेत्र चरेत्रमखेदम केशवाधृता मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे Yeah. तेरे हव कुल तरतिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धारण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत पूर्ण शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे सति दशन शिखरे धरणी कवलग्न शशिनि कलंक कलेव निबद्ध केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कर कमल वरे नखमधुत शृंग दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंग केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ललिता हिरण्य कशिपु तनु भृंग चलयति विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदन खनीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिर मये जगदकवत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तरसि दिक्षुरणे दिक्पथिकमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवदूता रामशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। शिव कुश विषदेव सनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशवदूता हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। यज्ञ विधे अहह श्रुति जातम् हृदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय देव कवेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदम् शुभदम् भवत्सारम् केशवदूता दशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वहनि धने कलयसि करबालम् घुमाके तुम्भिव किमपि करालम् केशवदृता कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। शिव पुष विषदेव सनम जलदाभम् हलहति भीति मिलित यमुनाभम् केशवकृता हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। ಕೇಶವದೃತ ಹಲಧರ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ